ईशानी जैन के घर पर मौजूद थी। अचानक इमरजेंसी सिचुएशन होने की वजह से जैन और उसके साथियों को जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने शनि को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था कि वो किसी के लिए भी दरवाज़ा ना खोले। उनके जाने के बाद ईशानी दरवाज़ा बंद करने के लिए जा रही थी कि तभी किसी ने उसे देख लिया था। वो एक औरत थी जो लगभग 40 साल के आसपास थी। ईशानी दरवाज़ा बंद करने को हुई तभी उसने दरवाज़ा पकड़ लिया। ईशानी उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। उसने पाकिस्तानी स्टाइल का सूट पहना हुआ था। माशाल्लाह, तुम तो देखने में बहुत ही खूबसूरत हो, वो औरत ईशानी के काला टीका लगाते हुए बोली। पर इस हाल में यहाँ क्या कर रही हो? कपड़े भी काफ़ी मैले कुचैले लग रहे हैं। कैप्टन साहब के यहाँ काम करने के लिए आती हो क्या? ईशानी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। वो चुपचाप खड़ी थी। तब उसे औरत ने बेचारा सा चेहरा बनाकर कहा, या अल्लाह, तुम तो बोल भी नहीं सकती, मजलूम हो। माफ़ करना बहन, ध्यान नहीं दिया। कैप्टन साहब काफ़ी नेक दिल के हैं, ज़रूर तुम्हारी बदहाली को देखकर दया खाकर काम दे दिया होगा। शनि ने उसकी कन्फ्यूजन को बरकरार रखा। उसने लाचारी से बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो औरत बोली, कमज़ोर लग रही हो, लगता है काफ़ी दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कपड़े और खाना दोनों दे दूंगी। वैसे मेरा नाम नरगिस है। नरगिस ईशानी का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने को हुई, तभी ईशानी ने नामी सिर हिला दिया। नरगिस ने गहरी सांस लेकर कहा, काम नहीं हुआ क्या तुम्हारा? कोई बात नहीं, तुम्हें कपड़े और खाना मैं यहीं पर ला दूंगी, बस दरवाज़ा बंद मत करना। अब कैप्टन साहब इतना नेक काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। नरगिस ईशानी को वहीं पर लपने का बोलकर चली गई थी। वहीं ईशानी अपना सिर पकड़कर खड़ी थी। वो मन ही मन बोली, पता नहीं क्या मुसीबत है, मेरी हालत क्या इतनी ख़राब हो रखी है जो मैं किसी काम वाली बाई जैसी दिख रही हूँ। ईशानी वहाँ कश्मकश में खड़ी थी। तभी नरगिस आई, उसके हाथ में दो जोड़ी कपड़े थे। उसने ईशानी को कपड़े देते हुए कहा, अपने लिए जोड़े लिए थे पर छोटे आ गए, सोचा था कहाँ बाजार जाकर इन्हें बदलवा कर लेकर आऊँगी, रिश्तेदारों में ही किसी को तोहफा देने का सोचा था, तुम रख लो, तुम्हारे आ जाएंगे। ईशानी ने उसे देखकर हल्की मुस्कुराहट दी। वो एक नेक औरत नजर आ रही थी। ईशानी ने उसे देखकर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, जिस पर वो हैरानी से बोली, अरे ये क्या कर रही हो, ऐसे हाथ नहीं जोड़ते हैं हमारे यहाँ, पता नहीं है क्या। ईशानी ने तुरंत अपने हाथ नीचे कर लिए। नरगिस ने सिर हिलाकर उसे पर तरस खाते हुए कहा, तुम बहुत मासूम हो, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, कैप्टन साहब ने भी तुम्हें यही कहा होगा, और ये कुछ खाना रख लो। नरगिस ने ज़बरदस्ती ईशानी के हाथ में टिफ़िन पकड़ा दिया और वहाँ से चली गई थी। उसके जाते ही ईशानी ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आई। ईशानी ने अंदर आते ही खुद को आईने में देखा तो उसके कपड़े तो मैले थे ही, साथ में कुछ जगह से फटे हुए भी थे। उसका चेहरा धूल मिट्टी लगने से काला हो गया था। चलो खाना ना सही, कपड़े तो मिल ही गए, ज़रूर इस टिफ़िन में नॉनवेज होगा, एक तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, ईशानी ने बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहा और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। वो घर ज़्यादा सुख सुविधाओं के हिसाब से नहीं बनाया हुआ था, वहाँ एक छोटी बाल्टी में पानी रखा हुआ था, ईशानी को उसी से काम चलाना पड़ा। नहाकर ईशानी ने उसे औरत का दिया हुआ सूट पहने, जो पाकिस्तान स्टाइल में था और वाइट और पीच कलर का था। ईशानी के वो थोड़ा ढीला था पर फिर भी उसने एडजस्ट कर लिया। शायद किचन में कुछ रखा हो जिससे मैं अपने लिए कुछ बना सकूं, ईशानी धीरे से बोली और फिर किचन में गई तो वहाँ आलू और प्याज के अलावा और कुछ नहीं था। एक छोटे से फ्रिज में अंडे रखे हुए थे जो ईशानी के किसी काम के नहीं थे। अब तो उसे नरगिस के टिफ़िन को खोलकर ही देखना होगा, उम्मीद है कि वो उसमें नॉनवेज ना लेकर आई हो, ईशानी मन ही मन बोली और जाकर नरगिस के लिए टिफ़िन को खोला। दिन उसकी किस्मत अच्छी थी जो नरगिस ने उसे कपड़े देने के बाद अब खाना भी प्रोवाइड करवा दिया था। उसमें सिंपल वेज राइस, ब्रेड के कुछ टुकड़े और जैम रखा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे उसके घर में काफ़ी सारे चावल बच गए होंगे। चलो एक दिन का जुगाड़ हो गया, ईशानी बोली और जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। वहीं दूसरी तरफ जैन, आदम और साद आर्मी कैंप पहुंचे। वहां बाकी सोल्जर भी लाइन में लगे हुए थे। उनके जनरल इकबाल आजमी नामक शख्स था जो आगे खड़ा था। इकबाल आजमी सख्त और तेज आवाज में बोला, एक बार फिर दुश्मनों के यहाँ हमला हुआ है और उन्होंने खुद कोई जिम्मेदारी लेने के बजाय सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल दिया है। उन्होंने हमारे साइड सीज फायर किया, हम इसका बदला लेकर रहेंगे, जंग होगी, जंग, जनरल आजमी बोल रहे थे। तभी भीड़ में एक लड़का धीरे से बोला, जनरल साहब को तो ज़रा भी खुदा का खौफ नहीं है, गोलियां पहले हमारे साइड से चली थी और सीधा इल्ज़ाम हमसायों पर लगा रहे हैं। तुम उन्हें हमारा हमसाया क्यों कह रहे हो? एक सच्चा पड़ोसी ऐसी हरकत नहीं करता है। पहले उन्होंने हमला किया था, उसकी बात सुनकर दूसरे लड़के ने जवाब दिया। उन दोनों की बहस आगे बढ़ती उससे पहले जनरल आजमी ने तेज आवाज में कहा, चलिए अब बातें बनाना बंद कीजिए और जाकर बॉर्डर पर तैनात हो जाइए। अगर उनकी तरफ से एक गोली चले तो दो गोलियां चलाना, उन्हें भी तो पता चले हम किसी मामले में कम नहीं है। जैन उनका कप्तान था, उसने जनरल को सैल्यूट किया और फिर उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए अलग अलग टीम बनाई। वो अपनी टीम के साथ बॉर्डर की तरफ जा रहा था, जैन के साथ में साथ चल रहा था। उसने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, यहाँ तो सब गड़बड़ हो गई है, ऐसे में हम उसे मोहतरमा को वापस कैसे भेजेंगे सर? तुम चुप रहो और यहाँ गलती से भी उसे जिक्र मत करो, वो पकड़ी गई तो उसके साथ साथ हमें भी सजा मिलेगी, जैन ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। ईशानी की फिक्र तो उसे भी हो रही थी, ऊपर से वो उसे अकेला भी छोड़कर आया था। जैन ने मन ही मन कहा, उम्मीद है उसके खाने लायक उसे कुछ मिल गया होगा, वरना बेचारी पिछले इतने दिनों से भूखी है, ठीक से कुछ खा पी नहीं रही थी, अब तो खुदा ही मालिक है उसका। जैन चाहकर भी ईशानी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, ऊपर से उन्हें जो ऑर्डर मिला था उसके बाद न जाने उसे कब घर जाने को मिलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष दीपिका को लेकर अपने नए घर में पहुंचा। उसने एक लग्जूरियस अपार्टमेंट में फ्लैट लिया था, वो 6 BHK का एक लग्जूरियस फ्लैट था। वहां आते ही रुद्राक्ष दीपिका को उसके कमरे में लेकर गया, उसने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। रूम का इंटीरियर डिसेंट था, वहां रूम में ईशानी और दीपिका की एक बड़ी सी फोटो लगी हुई थी, जिसे देखकर दीपिका की आंखें नम होने लगी। रुद्राक्ष ने दीपिका को हल्का सा हक किया और उन्हें सहलाकर कहा, मैंने अभी मॉम को ईशानी के बारे में बताया नहीं है, उन्हें बताने जा रहा हूँ, प्लीज मेरा साथ दीजिएगा। ये सब मत करो ना रुद्री जी, कोई ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है, हमने कह देंगे कि ईशानी हॉस्पिटल में है, दीपिका ने भारी आवाज में कहा। मैं उन्हें पिछले 2 दिनों से झूठ बोल रहा हूँ, अब और झूठ नहीं बोल सकता हूँ, वो बार बार मुझे ईशानी के बारे में पूछता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता उन्हें ये कहना कि ईशानी अब हमारे साथ नहीं है, रुद्राक्ष ने जवाब दिया। आज वो खुद को सख्त रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि रुद्राक्ष के पास कमजोर पड़ने का रास्ता नहीं था। दीपिका ने रुद्राक्ष का साथ देने के लिए हमी भर दी थी, वो अपना सामान अनपैक कर रही थी जिसमें रुद्राक्ष उसकी हेल्प कर रहा था।
लगभग आधे घंटे बाद मैं घर की डोरबेल सुनाई थी। रुद्राक्ष समझ गया था कि मोक्ष रुद्री को लेकर वहां पर आ गया है। उसने दीपिका से कहा, बाहर चलते हैं, मॉम आ गई है। आई डोंट नो उन्हें कैसे बताऊं, पर मैं अब उनसे और नहीं छुपा सकता। रुद्राक्ष तेज कदमों से चलते हुए लिफ्ट की तरफ जाने लगा, उसके पीछे पीछे दीपिका भी आ रही थी। रुद्री मोक्ष के साथ थी, वो हैरानी से बोली, हमारा घर इतना बड़ा तो है, फिर क्या जरूरत थी दूसरा नया घर लेने की? रुद्राक्ष का डिसीजन है मॉम, उन्हें उस घर में नहीं रहना है, मोक्ष ने धीमी आवाज में कहा। वो ज्यादा कुछ नहीं बोला। अगले ही पल रुद्राक्ष ने उनके लिए डोर अनलॉक कर दिया था। वहां पहुंचते ही रुद्री की नज़र रुद्राक्ष के बाद सीधे दीपिका पर पड़ गई, वो दीपिका के गले लग गई। उसे लगा ईशानी भी यहीं कहीं पर होगी। रुद्री दीपिका से अलग हुई और थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ बोली, ईशानी कहाँ है, वो बाहर क्यों नहीं आई? रुद्राक्ष की उम्मीद के मुताबिक रुद्री ने आते ही ईशानी के बारे में पूछ लिया था। रुद्री को याद आया तो वो अपने सिर पर हल्का सा मारते हुए बोली, मैं भी ना कुछ याद ही नहीं रहता, तुमने कहा था ईशानी के पैर फ्रैक्चर हो गए हैं, तो वो बाहर कैसे आएगी, कौन से कमरे में है, मुझे उसके पास लेकर चलो। एक पल के लिए वहां बिल्कुल सन्नाटा सा आ गया था। रुद्राक्ष रुद्री के पास आया और उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए रुद्री की आंखों में देखकर खुद को सख्त करके बोला, वो नहीं है मॉम। क्या मतलब नहीं है, नाराज है क्या मुझसे कि मेरी गलती की वजह से एक्सीडेंट हो गया? देखो उसे बोलो कि ऐसी छोटी बातों पर नाराज होना अच्छी बात नहीं है, मुझे बताओ तुम वो कहाँ है, मैं खुद उससे बात करती हूँ, रुद्री ने सर हिलाकर कहा। वो इमोशनल हो रही थी तो उसकी आंखें नम होने लगीं। मोक्ष जानता था रुद्राक्ष इस बारे में रुद्री को नहीं बता पाएगा, वो खुद को कितना भी सख्त कर ले लेकिन ईशानी के जाने की बात वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। रुद्राक्ष की आंखों से आंसू बाहर बहने को तैयार थे तो वो इधर उधर देखते हुए जल्दी जल्दी पलके झपकाने लगा। इधर उधर क्यों देख रहे हो रुद्राक्ष, मुझे जवाब दो कि ईशानी कहाँ है, डोंट टेल मी कि तुमने फिर से उससे झगड़ा कर लिया है, कहीं तुमने उसे घर से तो नहीं निकाल दिया, रुद्री गुस्से में रुद्राक्ष पर चिल्लाकर बोली। रुद्राक्ष गहरी सांस लेते हुए उसे कुछ कदम दूर हो गया, तभी मोक्ष रुद्री के पास गया और सर झुकाकर बोला, मॉम ईशानी अब इस दुनिया में नहीं रही है, शी इज नॉट एनी मोर। जैसे ही मोक्ष की बात खत्म हुई वहां एक थप्पड़ की तेज आवाज गूंजी। रुद्री ने मोक्ष के गाल पर कस के थप्पड़ मारा था, वहीं रुद्राक्ष की आंखों से कैद आंसू अब बाहर निकल गए थे, अब उसका खुद पर कंट्रोल करवाना नामुमकिन साबित हो रहा था।